नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए विधायक दल की कल पटना में होगी बैठक। नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा ने कल होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया पर्यवेक्षक, दो सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चयन को लेकर पटना से दिल्ली तक बातचीत का दौर जारी। और राजनीतिक गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आ रहे हैं पटना। अब समाचार विस्तार से। एनडीए विधायक दल की कल पटना में बैठक होगी। बैठक में राजग के सभी पांच दल, भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नव निर्वाचित विधायक भाग लेंगे। इस दौरान एनडीए गठबंधन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इधर इससे पहले एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल पटना में प्रदेश कार्यालय में होगी, जहां पार्टी के नव निर्वाचित विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। चुनाव को लेकर पार्टी की केंद्रीय इकाई ने वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इधर जदयू के विधायक दल की बैठक भी कल होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। एनडीए गठबंधन के विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच नई सरकार के स्वरूप को लेकर बातचीत का दौर जारी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बातचीत के दौरान 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नामों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुलाकात के बाद जदयू के दोनों वरिष्ठ नेता पटना लौट आए। दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर मुलाकात के दौरान हुई बातचीत की जानकारी साझा की है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना पहुंच रहे हैं। श्री शाह मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इधर 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गांधी मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने गांधी मैदान में तैयारियों की समीक्षा की। इधर प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसे देखते हुए एसपीजी ने गांधी मैदान की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। पटना जिला प्रशासन ने 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि शपथ समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है।
जो इसमें प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा अच्छा से हो जाए। और इसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी पहले से ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राज्य की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने जातीय समीकरणों से बाहर निकलते हुए राज्य के विकास के लिए वोट किया है।
ये परम सौभाग्य बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। ये विकास की जीत है, नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है।
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार की जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री किशोर ने कहा कि नई सरकार से उनकी अपेक्षा है कि वो बिहार के लोगों से किए गए वायदे को पूरा करे।
तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोगों के प्रयास में, हम लोगों के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूँ।
जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर हार से हताश हैं। श्री चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वायदे को पूरा करने के लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है।
सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना के उसको 2 लाख तक हम मदद, सरकारी मदद पहुंचाए। कितने कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही सबको।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही आम मतदाताओं की प्रशंसा की है। पटना में मौलाना आजाद कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत हुआ है।
इतनी बड़ी प्रक्रिया सब शांतिपूर्वक ढंग से हुआ और पूरी स्टेट में एक जगह भी कहीं ये शिकायत नहीं आई जिसके नतीजे में रीपोल कराना पड़े, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र कितना हमारे लोगों के लिए, एक तो लोकतंत्र में उनकी आशाएं, मैं कमजोर हूं, मैं लोकतंत्र को माध्यम देख रहा हूं अपनी हालत को बेहतर करने का, और मेरा उसमें कितना विश्वास है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। और अभी अभी सूचना मिल रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 13,368 उम्मीदवार सफल रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए 893 अभ्यर्थी कामयाब हुए हैं। अभ्यर्थी परिणाम आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी लाइन से हटकर इन नेताओं के बयान से पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा और चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस सूची में पूर्व मंत्री अफाक आलम, पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही, पूर्व विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, पूर्व विधान पार्षद डॉ अजय कुमार सिंह समेत अन्य के नाम शामिल हैं। 21 नवंबर तक इन सभी से नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और दानापुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रामकृपाल यादव ने कहा है कि करारी हार से राजद परिवार में खलबली है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है।
तेजस्वी यादव को इतना वोट आ गया कि नेता प्रतिपक्ष बन गया, बच गए, जनता रिजेक्ट कर दिया। जो माँ बहन की बात करता है, योजना की बात क्या ना, अपनी बहन को जो न्याय नहीं दे सकता है, अपने परिवार को नहीं समा सकता है, वो प्यार को क्या समझ।
राज्य महिला आयोग राजद की वरिष्ठ नेता रोहिणी आचार्य के साथ अपमानजनक व्यवहार के मामले में स्वतः संज्ञान लेगा। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि ये सीधा सीधा शोषण का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर रोहिणी आचार्य स्वयं आयोग में आवेदन नहीं देती हैं तो बात बढ़ने पर महिला आयोग स्वतः ही संज्ञान लेगा।
तो निसंदेह महिला आयोग बैठी ही है महिला के तारणहार बनने के लिए। तो हमारे यहाँ अगर वो आवेदन करती है या फिर वो हरासमेंट का जो मामला है वो स्ट्रीम हो जाता है तब स्वतः संज्ञान देगी।
नकली QR कोड चिपकाकर लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में अधिकारियों को जांच अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर दूरसंचार विभाग ने परामर्श जारी कर लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर QR कोड से पेमेंट करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि स्कैन करने के बाद प्राप्तकर्ता का नाम और विवरण की जांच करें और डिजिटल लेन देन केवल आधिकारिक और भरोसेमंद ऐप के माध्यम से ही करें। प्रदेश के अधिकतर भागों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतर भागों में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। इसके बाद प्रदेश भर में तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है।
अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अररिया की एक स्थानीय अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में दोषी एक व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत सभी थानों में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत कतकौली के पास पटना बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 922 पर सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल के लहटन चौधरी सभागार में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इधर रोहतास समाहरणालय में भी सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। जिला पदाधिकारी रिचि पांडे ने इस संबंध में अपने आदेश में कहा है कि देर रात तेज ध्वनि से आम लोगों की शांति भंग होती है और बुजुर्गों, बच्चों और रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए विधायक दल की कल पटना में होगी बैठक। नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा ने कल होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया पर्यवेक्षक, 2 सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चयन को लेकर पटना से दिल्ली तक बातचीत का दौर जारी। और राजनीतिक गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आ रहे हैं पटना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।